इसलिए बना है कि वो संसार में जाके परमात्मा के गुणों का विस्तार करे, प्रसार करे। हम परमात्मा को देख लेते हैं कि उन्होंने दुख पैदा किया, उन्होंने कष्ट पैदा किया, नहीं ये मनुष्य है जिसने दुख को उत्पन्न किया। भगवान कहते हैं कि अपने मन में शीतलता स्थापित करेंगे, शांति के सागर में डालेंगे। जहां बैठे हैं आपका वातावरण इतना शांत में हो जाए कि जो भी व्यक्ति आपके समीप आए उसको शांति मिले, उसका हृदय कोमल हो जाए, उसके भीतर में मधुरता उत्पन्न होता है, उसके भीतर में आनंद उत्पन्न होता है। ये संतों का काम नहीं है, प्रत्येक मनुष्य का काम है कि वो सारे निष्कर्ष को बताए। परमात्मा ने मनुष्य को अपना प्रतीक बनाया है। यदि हम ऐसा काम नहीं करते हैं तो हम मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है, हम पशु। मन से, वाणी से, आत्मा से, पैसे से, जितना भी आपसे हो सकता है उसको दूसरे को सुख पहुंचाने की कोशिश करें। हम नहीं करते, हम सब पार्थिव हैं। सच्ची पूजा यही है कि ईश्वर की जो संतान है उनकी हम सेवा, उनकी सेवा ही ईश्वर की पूजा है। ठीक है, दो पल आप पंच करके बैठते हैं, माला लेकर बैठते हैं, वो एक तैयारी है, वो साधना का श्री गणेश है। वास्तव में पूजा ये है कि ईश्वर के जितने भी रूप हैं, चाहे वो मनुष्य है, चाहे पंछी है, चाहे पशु है, सबकी सेवा करें ईश्वर के दर्शन करते हुए। सब में ये भावना, ये बुद्धि केवल मनुष्य को दी है, परंतु दुख की बात है कि मनुष्य पशु बन रहा है, अपने दायित्व को बिल्कुल भूल गया और दोष देता है दूसरों को। ये संसार ऐसा करता है, संसार वैसा। प्रत्येक व्यक्ति दोषी है, संसार के दुख का कारण मनुष्य स्वयं ही है। तो जैसे भगवान बुद्ध के हृदय में करना उत्पन्न हुई, वो करना प्रत्येक व्यक्ति के भीतर में उत्पन्न होनी चाहिए। उसको रात को नींद नहीं आनी चाहिए कि मैं संसार की सेवा नहीं कर रहा हूं, मेरे द्वारा क्यों किसी को दुख पहुंच रहा है, मेरे द्वारा क्यों नहीं किसी को सुख पहुंच रहा। ये आंख बंद कर लेना, राम नाम कर लेना, ये एक तैयारी है। वास्तव पूजा जो है वो भगवान शिव के प्रत्येक रूप की पूजा है। ये जितना संसार है भगवान का ही रूप है, भगवान के भिन्न भिन्न रूपों की पूजा करना। किसके भीतर में शिव नहीं है, किसके भीतर में भगवान नहीं है। यदि भगवान बुद्ध के इसी एक सुझाव को हम मान लें तो संसार में कितनी शुद्धता, कितना आनंद होगा, कई दुख दिखे गए। तो मनुष्य की बुद्धि है, हम सब राक्षस हैं। इतिहास में आता है कि राक्षस और देवतागण अमृत के लिए जो अमृत मंथन करते हैं तो आपस में लड़ते हैं। परंतु मनुष्य का अवसर मिलता है, कोई लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं, आपका तन मन सबके लिए निचोड़ कोशिश करें कि कोई भी व्यक्ति दुखी न हो, हमारे व्यवहार से किसी को भी दुख न पहुंचे, सुख नहीं पहुंचता तो कम से कम दुख नहीं पहुंचना चाहिए। किसी से ऊंचा नहीं बोले, बड़ी मदद से, बड़ी मदद कर, किसी के बुरे विचार नहीं उठा, अपने शरीर से तन मन से रखा है तो सबकी सेवा करें।
मैत्री कहते हैं,
हमारे हृदय में सर्व मैत्री भाव स्थापित होने चाहिए, केवल नारेबाजी नहीं। जैसे हम प्रार्थना के बाद सत्संग के बाद प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु सब पर दया करो, केवल ये नहीं, स्वयं भी हम सब पर दया करें, प्रभु सब पर भला करो, प्रभु को क्यों छोड़ते हो, आप भी सब पर भला करो। ये हमारा स्वभाव प्रकृति हमारी बन जानी चाहिए। तब समझना चाहिए कि हम सत्संगी हैं, हम साधना करते हैं, अन्यथा बुरा तो वो भी नहीं है, परंतु वो वास्तविक साधना नहीं है। जो गुण ईश्वर के हैं वही गुण परमात्मा ने हमें दिए, मनुष्य को दिए, उन गुणों का प्रसार करना है। परमात्मा सबकी रक्षा करते हैं, तो परमात्मा का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको भी वही काम करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि कोई हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, सिख है, सब में परमात्मा है, सबकी सेवा करो, तन मन धन से सबकी सेवा करो। ये प्रथम साधन है कि हमारे हृदय में सर्वसृष्टि के लिए मैत्री भाव स्थापित हो जाए, सहज रूप से, नारेबाजी में नहीं, सहज में हो जाए। हमें खुद में स्वयं को भी पता न लगे कि हम क्यों सेवा कर रहे हैं, तो सबके साथ हम मित्रता का भाव स्थापित कर रहे हैं। सभी हमारे, वैसे कोई भी हमारा शास्त्र ऐसा नहीं है जहां ये शिक्षा नहीं दी जाती। परंतु हम व्यवहार में उसको उतारते नहीं। महात्मा गांधी ने, महात्मा बुद्ध ने जो भी कुछ किया वो तो प्राचीन संस्कृति को तराना है सादे शब्दों में। ये तो हमारी प्राचीन संस्कृति है। हम यज्ञ करते हैं, ओम शांति का पाठ करते हैं, उसके अर्थ समझिए, हम तो सारे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। हम तो प्रार्थना में सीमित नहीं रहना चाहिए, वो तो प्रार्थना व्यवहार में भी उतरनी चाहिए। हृदय में प्रेम और मैत्री भाव सबके लिए, मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए, पंखों के लिए, सबके लिए मैत्री भाव, मित्रता का भाव हो। हमारे शास्त्र कहते हैं सेवक का भाव, सब में परमात्मा है इसलिए हम सबके सेवक। हर वक्त मन से ये शब्द निकलने चाहिए, हे प्रभु सबका भाव, और मुझे भी शक्ति दो, मेरा तन मन धन भी आपकी सेवा, संसार की सेवा करते हुए आपकी सेवा करें। ये भी हमारे प्राचीन शास्त्रों के ही अनुरूप है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में करुणा और दया उत्पन्न होनी चाहिए। इसके लिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि सारा संसार को देखो, उनके दुख को देखो, उनके कष्ट को देखो, कि संसार कितना दुखी, ताकि आपके हृदय में करुणा उत्पन्न हो, दया उत्पन्न हो। भगवान कृष्ण भी यही गीता में फरमाते हैं, भगवान राम भी यही बतलाते हैं, और भी जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने इसी पर ही मत दिया है कि सच्चे साधक के हृदय में करुणा होनी चाहिए, दया का भाव होना चाहिए। जितनी करना अधिक होगी, जितनी दया का दया अधिक होगी, उतना ही वो ईश्वर के समीप जाने का अधिकारी होगा। जिसके हृदय में करना नहीं, दया नहीं, वो पत्थर की तरह संत है, वो ईश्वर के चरणों तक नहीं पहुंच सकता, उसकी साधना कभी भी सफल नहीं हो सकती। परिवार है, अकाल की स्थिति है, बच्चे हैं, बीवी है, एक ही समय का अन्न रह गया खाने के लिए,
ईश्वर भक्त था, ईश्वर उसके पीछे लेने आए हैं। कहा है कि मुझे भूख लग रही है, कृष्ण ने अपना भोजन उसको दे दिया। कहता मेरा पेट अभी भरा नहीं। अपनी स्त्री को कहा कि तुम अपना दे दो भोजन। वो कहता मेरा तो पेट अभी वैसे कर रहे थे, एक एक बच्चे का भोजन उसको खिलाओ, एक भी दाना नहीं रह गया पुरुष के लिए, मैं स्त्री के लिए बच चुके। तब व्यास सागर परमात्मा उन्होंने अपना रूप प्रकट किया और बहुत अच्छी बात कि तुम सच्चे भक्त हो, अपना मनुष्य को स्वयं तुम सेट कर लेना चाहिए, परंतु तो दूसरे के दुख की निवृत्ति के लिए सब कुछ बलिदान कर देना चाहिए। ये काम केवल पुरुष को ही दिया है। यदि प्रत्येक साधक जो चाहता है कि मुझे साधना बदलो, जो चाहता है कि मैं ईश्वर के समीप जाना चाहता हूं, उसको अभ्यास करना चाहिए कर्म का और दया का, स्वार्थ को छोड़ना चाहिए, निस्वार्थ ही बनना चाहिए। तब तो हमारी साधना में सफलता होने की संभावना है। अनित्रा पत्थर कितना भी नाम देता रहे, राम राम करता रहे, कुछ नहीं होता। कोमलता आनी चाहिए, देना आनी चाहिए। पुराने जमानों में दोस्त का दिन जैसे थे, गरीब मोहल्ले में कोई व्यक्ति भूखा तो नहीं सोया। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, मेरे देखते देखते की बात। प्रत्येक घर में ब्राह्मण आते थे, उनको रोटी दी जाती थी, अब ये सब प्रथा खत्म होती जा रही है। हम भी कुछ लोग हैं जो प्रातः घूमने जाते हैं तो पंखियों को बाजरा दाल आदि तो ऐसी बातों से अपने मन को सूक्ष्म कोमल बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। दूसरे के दुख की निवृत्ति में जितना सुख मिलता है और किस बात में नहीं मिलता। तो आपका आपको करना दया का प्रतीक बनने का आदर जाहिर करना, अपनी साधना के साथ साथ महान गुरु को भी अपनाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहा करता हूं कि साधना के समय गीता रामायण तथा अन्य जो भी ग्रंथ आपको अच्छा लगता है उसका अध्ययन करना चाहिए। हमें रामायण में भगवान की जीवन लीला से कितनी प्रेरणा मिलती है, भगवान कृष्ण की जात लीला से हमें कितनी प्रेरणा मिलती है, महात्मा गांधी के वर्तमान युग में उनके जीवन से हमें कितनी प्रेरणा मिलती है। इन महापुरुषों के जीवन का अनुसरण करना चाहिए, हमें पत्थर नहीं बनना चाहिए। संसार को दुखी देखकर हमारे हृदय में करुणा अंतर का भाव उत्पन्न चाहिए, उत्पन्न होना चाहिए, कोमलता उत्पन्न होनी चाहिए। रात को नींद ना आए, शिक्षक मेरे आस पड़ोस के लोग दुखी हैं पर मैं आराम से सो रहा हूं। सच्चा साधक वही है जिसके हृदय में करुणा है, जिसके हृदय में दया है, जिसके हृदय में सेवा का भाव। ठीक है आप लोग साधना करते हैं करिए, परंतु उसमें विशेष प्रगति तभी होगी जब हृदय में करुणा और दया का भाव उत्पन्न हो, पर वो भी दार्शनिक नहीं। हमारे एक मित्र थे दिवाली के दिन झोपड़े में जाते थे, गरीब आदमी के पास पैसे कहाँ हैं कि वो जाके मिठाई बाजार से खरीदे, आजकल की महंगाई। वो दिवाली की रात को झोपड़े में जाते, मिठाई ले जाते, ये नहीं एक आध पीस ले जाते, लेकिन डबल ले जाते उन झोपड़ियों में।
ये काम होती है, ये करना है, ये क्या
और कई तरीके हैं इस संसार की सेवा करने के और अपने चित्त को करुणामय दयामय बनाने के लिए बहुत साधु है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही खुश होना चाहता है तो उसको संसार के दुख की पर चिंता नहीं। सच्चे साधन को यह देखना है कि मेरे आस पड़ोस में मेरे रिश्तेदार, मेरे संबंधी, मेरे मित्र और सारे देश के लोग या विश्व के लोग क्या वो खुश है कि नहीं, उनके दुखों की तस्वीर अपने सम्मुख रखिए और स्मरण करिए कि हम उनके दुखों की निवृत्ति किस तरह कर सकते हैं। और कुछ नहीं कर सकते तो परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि संसार कितना दुखी है, कृपा करो मैं दुर्बल हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आती, मेरे शरीर में शक्ति नहीं है और भी कई प्रकार की शक्ति जैसे पैसे की शक्ति, बुद्धि की शक्ति वो भी नहीं है, प्रभु आप ही कृपा करना करें ताकि सब और आनंद ही आनंद हो, सुखी सुख हो, शांति शांति। दूसरे के सुख को सोचिए, दूसरे के सुख को भी सोचिए कि प्रभु इसको इस व्यक्ति को दुख से निवृत्त कर, इसको सच्चा सुख प्रदान कर। आपकी प्रार्थना स्वीकार हो या ना हो परंतु आपके हृदय में कोमलता आएगी, आप निस्वार्थी बनेंगे, स्वार्थी नहीं बनेंगे। जो व्यक्ति स्वार्थी है वो कभी साधना में सफल नहीं होता। मेरे पिताजी के एक मित्र थे, वो जब तक खाना खाने से पहले 500-700 आदमियों को खाना नहीं खिला लेते थे, स्वयं नहीं खाते, एक दो आदमियों को नहीं 500-700 आदमी। अभी लोग हैं ऐसी तक नहीं, फिर आपको ईश्वर का रूप बनाइए जो ईश्वर के कौन है, ईश्वर कर्म का सागर है, ईश्वर त्याग का सागर है। हम भी उन गुणों को अपनाना चाहिए और वे गुण सहज रूप में बन जाए, इसके झंडोरे पीटने की जरूरत नहीं। आपका व्यवहार ही ईश्वर में हो, करुणा का रूप लिए हो, दया का रूप लिए हो, सेवा का रूप लिए हो, हम अपने कर्मों पर निगाह रखते हैं। पाप हाथ पांव से भी होता है, पाप वाणी द्वारा भी होता है, पाप विचारों से भी होता है, तो प्रत्येक व्यक्ति को गुरुदत्त जी की तरह निर्मल बनना है। गंगा जी भगवान शिव के सर से निकले, आप भगवान पंडिता परमात्मा की संतान है। गंगा जी ने भगवान शिव के जो गुण हैं उनको कायम रखा है, परंतु हमने पंडिता परमात्मा से जन्म लिया, हमने परमात्मा के गुणों को भुला दिया, तो भीतर में चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि हमें कौन कौन सी बुराई है। कुछ गुरुदेव का आदेश था कि एक एक कुछ दादा गुरु का दास जी महाराज का कि एक एक अपने अवगुण को लेकर चले जाइए मनन करके, जो सबसे सच हो पहले उसको छोड़ने का प्रयास करें। इसी तरह धीरे धीरे आप में जितनी कमियां हैं, जितनी बुराइयां हैं, जितने अवगुण हैं उनको छोड़ने का प्रयास करें। जब आप सब अवगुणों से निवृत्त हो जाएंगे तो आप एक सुंदर व्यक्ति भगवान कृष्ण का रूप बन जाएंगे, ईश्वर का रूप बन जाएंगे। हम राक्षस हैं क्योंकि भीतर में अवगुण है, जब अवगुण खत्म हो जाएंगे हम आत्मा का रूप बन जाएंगे, परमात्मा का रूप बन जाएंगे। साधना का परिणाम यही तो है, हमारा जीवन का लक्ष्य यही तो है, परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं, दर्शन तो अपने आप भीतर में हो जाएंगे। ये गंगा स्नान है, ये जो सुबह प्रातः स्नान करते हैं बाहर का स्नान कर देते हैं, भीतर का स्नान करना चाहिए, बात तो ठीक है परंतु महत्ता है भीतर के स्थान। इसमें भी बड़ी शक्ति चाहिए, अपने अवगुणों को देखना। शक्तिमान व्यक्ति ही देख सकता है, दुर्बल व्यक्ति नहीं देखता है। दुर्बल व्यक्ति तो अपने गुणों को कहते, गुणों को कहता मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने वो किया, ये किया, सारा दिन आपका ढिंडोरा पीटते रहते हैं। यहां मैं आपको सावधान कर दूं कि अपनी बुराइयों को भी बार बार नहीं सोचना चाहिए, कभी सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार, नहीं तो हीन भावना आ जाती है। सच्चे हृदय से आप देखें, अपने अपनों को देखेंगे, आप कहेंगे वास्तव में ऐसा व्यक्ति हूं मैं, मेरे में और राक्षस में तो कोई अंतर ही नहीं। आप देखिए कभी, आप विचार करके आप स्वयं निरीक्षण करेंगे, मन करेंगे, आप देखेंगे आपको भूतों से कम नहीं है, राक्षसों का कम नहीं है। इसके तो गुरु महाराज ने सावधान किया कि धीरे 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 एक ही कब्र को लेना, नहीं तो पागल हो जाएंगे। अंतर की स्थिति हमारी इतनी बनी है कि हमारे और राक्षस में कोई अंतर नहीं। भले ही बड़े सुंदर कपड़े पहने हुए, बाहर से विंडो ड्रेसिंग किए हुए हैं, परंतु भीतर में तो हम राक्षसों से कम नहीं। तो सावधानी से धीरे प्रत्येक व्यक्ति ऐसे कर्म करता है। जैसे कुछ लोग शराब पीते हैं तो थोड़े क्षणों के लिए उनको नशा आ जाता है, प्रसन्नता आ जाती है, तथा उनकी हालत नींद सी हो जाती है, वो दुख सुख को भूल जाते हैं, इसी को आनंद समझते हैं। परंतु ये स्थायी नहीं है, टेम्परेरी है। आनंद का भीतर का जो आना चाहिए वो स्थायी आना चाहिए। महापुरुषों ने इसका साधन बताया है, वो साधना है नाम है। नाम का जो नशा है ये प्रतिक्षण हमारे साथ होना चाहिए। नाम हमारे नाम का चढ़ी रहे के साथ, यानी ये संसारिक नशे की जो वस्तुएं हैं उनका त्याग करना चाहिए। नाम में जो आनंद मिलता है उस आनंद की अनुभूति प्रतिक्षण होती रहनी चाहिए। राम राम करते हुए यदि आपको राम का आनंद नहीं आता तो कुछ साधना कोई महत्व नहीं। नाम लेते हुए नाम का भीतर में आनंद आना चाहिए, एक प्रकार का नशा आना चाहिए। सच्चा नाम भी इस नाम को लेकर हमारा रोम रोम प्रफुल्लित हो जाए तो तभी होगा। धीरे धीरे जब भीतर में निर्मलता आ जाए, कोमलता आ जाएगी, करुणा आ जाएगी, सहानुभूति आ जाएगी, ऐसे गुणों के आने के पश्चात ही आनंद आएगा। और वास्तविक आनंद तब आएगा जब धीरे धीरे आप भीतर में जाकर अपने स्वरूप अपनी आत्मा में मिले हो। मां कुछ कहते हैं इसका निष्ठा दिन रात चढ़ा रहना चाहिए, कोई क्षण इस आनंद से हम चूर नहीं होना चाहिए। दिन रात इस नशे में डूबे रहे। और इसमें और सावधानी है, संसार को प्रदर्शन नहीं करना है, बड़े जज्ब की जरूरत है। भीतर में ही आनंद लेते रहिए, बाहर प्रदर्शन करना की जरूरत नहीं है। बाहर की प्रदर्शन ये है कि हमारा व्यवहार आत्ममय है।